पृष्ठ संख्या 358 अध्याय 22 मीमांसा दर्शन। मीमांसा शब्द का अर्थ है पूजित विचार या पूजित जिज्ञासा। इससे स्पष्ट है कि यह किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वर्णन है। यह माना जाता है कि श्रुतियों में भिन्नता है, स्मृतियों में भिन्नता है। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें भिन्नता न हो। श्रुतियों के परस्पर भिन्न मतों की व्याख्या कर उनको एकात्मक बनाने के लिए किया जाने वाला विचार मीमांसा कहलाता है। पहले इसका प्रयोग वैदिक कर्मकांडों के व्याख्या के संदर्भ में होता था, पर पीछे जब जिज्ञासा, मीमांसा और समीक्षा पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किए जाने लगे तो इसका अभिप्राय हुआ समीक्षात्मक विवेचन। यहाँ दर्शन के क्षेत्र में इसका अभिप्राय है वैदिक कर्मकांडों, धर्म की व्याख्या। इसलिए मीमांसा सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, अर्थात इसलिए धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। यह वाक्य वेदांत सूत्र के प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए का पूरक है। इससे स्पष्ट है कि वेद के दो पक्ष हैं, कर्मकांड जिनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में है तथा ज्ञानकांड जिनका उल्लेख उपनिषदों में है। मीमांसा कर्मकांड से संबंधित है और वेदांत ज्ञान कांड से। इसी से इसका नाम कर्म मीमांसा तथा वेदांत के पूर्व होने से पूर्व मीमांसा आदि भी दिया गया है। इसका प्राचीन नाम न्याय भी है, क्योंकि मीमांसक वे प्रथम न्यायिक हैं जिन्होंने तर्क के द्वारा संदिग्ध विषयों पर निर्णय दिया है। मीमांसा के उद्भव का कारण था जनता के कर्म के प्रति उत्पन्न संदेह। इससे यज्ञ बलि से लोग विरत होने लगे थे। यद्यपि इसको ब्राह्मणों ने प्रतिपादित किया था और श्रोत सूत्रों ने आगे बढ़ाया था, इसी की संगत व्याख्या मीमांसा ने करना प्रारंभ किया। पर मीमांसा ने केवल कर्मकांड व्याख्या ही नहीं की, अपितु इसको दार्शनिक धरातल पर स्थापित किया। इसीलिए मीमांसा कर्म का दर्शन कहा जाता है। मीमांसा दर्शन के सूत्रकार महर्षि जैमिनी हैं। अपने पहले की कई मीमांसक आचार्यों का स्थिति को उन्होंने स्वीकार किया है, जिनकी कृतियां अब अनुपलब्ध हैं। जैमिनी के मीमांसा सूत्र पर शबर शामी का भाष्य है। इस पर प्रभाकर मिश्र के बृहती टीका है। शबर भाष्य पर कुमारिल भट्ट के तीन विशाल वृत्ति ग्रंथ हैं। प्रभाकर मिश्र कुमारिल भट्ट के दृष्टिकोण से कतिपय बिंदुओं पर भिन्न है। यद्यपि प्रभाकर कुमारिल के शिष्य थे, कुमारिल ने प्रभाकर के कुशाग्र बुद्धि के कारण उनका नाम गुरु विद्वान रखा था। इन दोनों के मतों के कारण दो भिन्न संप्रदाय मीमांसा दर्शन में चल पड़े। कुमारिल भट्ट के अनुयायी भट्ट मत के कहलाते हैं और प्रभाकर मिश्र के अनुयायी गुरु मत के। गुरु मत भट्ट मत से प्राचीन माना जाता है। एक, प्रामाण्यवाद। मीमांसा में अन्य दर्शनों की तरह प्रामाण्यवाद पर विचार हुआ है। ज्ञान है ज्ञान, अज्ञात तथा सत्य पदार्थ का ज्ञान है। प्रमा चाज्ञात तत्त्वार्थ ज्ञानम्। यहाँ अज्ञात और सत्य दो गुणों की बात की गई है। अज्ञात से अभिप्राय है जो स्मृति में पहले से न हो तथा सत्य से अभिप्राय है जिसमें भ्रम या संशय का अभाव हो। इसके लिए चार शर्तें बताई गई हैं। कारण दोष बाधक ज्ञान रहितम अग्रहिताग्राही ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात कारण सामग्री दोष रहित हो। दो, अन्य ज्ञान द्वारा उसके ज्ञान में बाधा न उत्पन्न हो। तीन, जिस ज्ञान में पूर्व ज्ञान की अनुभूति हो। तथा चार, वह वस्तु सत्य हो और उसका ज्ञान भी सत्य यथार्थ हो। इन्हीं शर्तों में मीमांसकों का ज्ञान प्रमा है और इस ज्ञान का कारण प्रमाण है। इसी से मीमांसक मानते हैं कि वस्तु ज्ञान सदा सही होता है, वह स्वतः प्रमाण होता है। इससे ज्ञान स्वतः प्रकाश होता है। वह यह सर्वमान्य नियम है कि जिस विषय का हमें ज्ञान हो रहा है, यदि वह कारण विषय दोष रहित है तो उससे प्राप्त होने वाला ज्ञान भी दोष मुक्त होगा। यही ज्ञान यथार्थ ज्ञान होता है। उदाहरण स्वरूप हम सामने रखा सफेद शीशे का चश्मा देखते हैं। कोई दृष्टि दोष की बाधा नहीं है कि हम उसका रंग साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं, या न वहाँ अंधेरा है कि हमें स्पष्ट रूप से उसका रंग नहीं दिखाई पड़ रहा है। इससे प्रत्यक्ष रूप से उसका यथार्थ ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। इसकी सिद्धि के लिए हम चश्मा को उठाकर पहनते हैं तो सभी चीजें साफ साफ दिखाई देती है जैसी है। इस क्रिया द्वारा भी ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है, अतः ज्ञान और क्रिया में विरोध नहीं है। पर यदि कारण सामग्री दोषयुक्त होगी तो सही ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे पीलिया का रोगी, जिसे हर वस्तु पीला ही दिखता है, उसे सफेद सीपी या शंख भी पीली दिखाई देती है। यहाँ उसके नेत्र विकार के दोष के कारण उसका ज्ञान यथार्थ नहीं माना जा सकता। इस विवेचन के आधार पर मीमांसकों का मानना है कि एक, प्रमाणम स्वतः उत्पद्यते, अर्थात प्रमाण स्वतः उत्पन्न होता है, वह कहीं बाहर से नहीं आता, वह ज्ञान जनक सामग्री से ही स्वतः उत्पन्न होता है, ज्ञान जनक सामग्री स्वतः प्रमाण होता है। दो, प्रमाणम स्वतः जायते, अर्थात प्रमाण स्वतः जाना जाता है, ज्ञान के साथ ही प्रमाण का भी ज्ञान हो जाता है, उसे बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता, ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है। यही मीमांसकों का प्रमाण्यवाद है। इसको स्वतः प्रमाणवाद का नाम देते हैं। पर जब साधक वस्तु में दोष हो तथा साधक प्रणाली दोष युक्त हो तो यह स्पष्ट मानना होगा कि ज्ञान सही नहीं हो रहा है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान की प्रामाणिकता है। पर इसकी सिद्धि दूसरे प्रमाणों द्वारा की जा सकती है, स्वतः नहीं। ज्ञान की सिद्धि न होना ही अप्रमाण कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि प्रामाण्य स्वतः होता है जबकि अप्रामाण्य परतः होता है। पर न्याय दर्शन मीमांसकों से यहाँ भिन्न है। उनके अनुसार ज्ञान स्वतः नहीं परतः होता है, यह बाहर से होता है। यह तब तक सिद्ध नहीं माना जाता जब तक बाहरी प्रमाणों द्वारा इसे सिद्ध न कर दिया जाए। इससे वे मानते हैं कि ज्ञान को दूसरे प्रमाणों से भी सिद्ध करना होता है। उदाहरण के लिए, कलम का ज्ञान तभी सिद्ध माना जा सकता है जब उससे लिखा जा सके। किंतु न्यायिकों के इस मत को मीमांसक नहीं मानते। इसके पीछे कारण देते हैं कि किसी ज्ञान को बाहरी प्रमाणों से सिद्ध करने में अनवस्था दोष हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार एक प्रमाण को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे आदि से सिद्ध करने की क्रमशः यह क्रिया चलती रहेगी। इसका कोई अंत नहीं होगा। भ्रम, चूंकि प्रामाण्यवाद का विचार कर रहे हैं अतः भ्रम के संबंध में भी यही विचार करना आवश्यक है। भ्रम के विषय में प्रभाकर और कुमारिल के अलग अलग मत हैं। प्रभाकर ने भ्रम का कारण ज्ञान में गड़बड़ी होना बताया है। यह गड़बड़ी विवेक को ग्रहण न करने के कारण होती है। पूर्व स्मृति और प्रत्यक्ष में भेद के अविवेक ज्ञान के कारण ही ऐसा होता है। उदाहरण स्वरूप हम सीपी शुक्त देखते हैं। इसका रंग श्वेत होने से पूर्व स्मृति में रजत के श्वेत होने का ज्ञान उभर आता है और उसके कारण सीपी को रजत कह बैठते हैं। इदम रजतम इदम रजत की सूचना देकर इसे विवेक पूर्वक पहचानने की कोशिश नहीं करते। इसी से यह भ्रम होता है। यहाँ शुक्ति से निकले चमक का ही अनुभव करते हैं और चमक को देखकर रजत का स्मरण उसे सुमेलित कर इसे रजत कह देते हैं। इसे विवेकाग्रह या ख्यातिवाद कहते हैं। कुमारिल का मत है कि कभी कभी दो समान प्रकार के धर्म वाली वस्तुओं के समान गुण का संबंध जोड़ दिया जाता है। जैसे शुक्ति की सफेदी और रजत की सफेदी को एक दूसरे में जोड़ने के कारण शुक्त को रजत की सफेदी कह बैठना या शुक्ति में रजत प्रकार का ज्ञान कर लेना। यहाँ सुक्तित्व और रजत्व दो अलग किंतु समान धर्म होने के कारण सुक्ति को देखकर रजत का भान हो जाता है। न्याय में इसे प्रकारता का नाम देते हैं क्योंकि ज्ञान होता है सुक्ति का पर प्रकारता होती है रजकत्व की। मीमांसा में इसे अन्य ख्याति या विपरीत ख्याति कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रभाकर भ्रम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इसका कारण स्मरण शक्ति में दोष के कारण भेद ज्ञान का अभाव मानते हैं। पर कुमारिल भ्रम की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसका विषय कारण नहीं होता बल्कि विषयों के बीच उनके धर्म का संसर्ग कारण होता है। प्रमाण, मीमांसा में छह प्रकार के प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इनको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। अन्य प्रमाणों को परोक्ष प्रमाण कहा गया है, किंतु प्रभाकर ने प्रथम पांच ही प्रकारों को ही केवल प्रमाण माना है। इनकी दृष्टि में अनुपलब्धि का कोई अलग स्थान नहीं है। यद्यपि जैमिनी ने तीन ही प्रमाण बताया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसी में प्रभाकर ने उपमान और अर्थापत्ति जोड़ा तथा कुमारिल ने अनुपलब्धि जोड़ा। इस प्रकार इसकी संख्या क्रमशः बढ़ती गई। एक, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा दी गई है, साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्षम, अर्थात जिस विषय का साक्षात ज्ञान हो वही प्रत्यक्ष है। इसकी दो अवस्थाओं निर्विकल्प और सविकल्प को दोनों ने माना है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष वह है जिसमें वस्तु है, इतना ही ज्ञान होता है, जैसे इदम यह है, इसके स्वरूप का बोध नहीं होता। इसके बाद की अवस्था आती है कि हम वस्तु के स्वरूप गुण धर्म से परिचित होकर उसका पहचान करते हैं, जैसे इदम रज्जु, यह रस्सी है, यही सविकल्पक प्रत्यक्ष है। इन दोनों प्रत्यक्षों के लिए मीमांसा में तीन प्रकार की समीपता बनती है। इंद्रिय पदार्थ को देखती है, इंद्रिय के प्रत्यक्ष को मन ग्रहण करता है, मन की भावना आत्मा को बोधित होती है। इस प्रकार पहला संबंध इंद्रिय पदार्थ का, दूसरा इंद्रिय और मन का, तीसरा मन और आत्मा का है। इसमें तीनों विषय ज्ञान और आत्मा का संबंध आवश्यक है। दो, अनुमान। यह ज्ञान से मिलता जुलता है। दोनों में मात्र अंतर यह है कि न्याय अनुमान के लिए यहाँ जहाँ पांच वाक्यों को प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन को मानता है, वहाँ मीमांसा या तो पहले तीन या बाद के तीन को ही मानता है। तीन, उपमान। यह सभी प्रमाणों से अलग स्वतंत्र प्रमाण है। जब हम जंगल में नील गाय देखते हैं तब पहले देखे हुए गाय की स्मृति जागृत हो जाती है कि गाय के समान है, तभी हमें ज्ञात होता है कि यह नील गाय है। यह ज्ञान उपमति कहलाता है। इसको संज्ञा संगी संबंध ज्ञान कहते हैं, जो उपमान में नहीं बल्कि नील गाय के प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है। इसके बाद पूर्व कथन या आप्त वाक्य की स्मृति होती है कि गाय के समान ही गवय नील गाय होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष पहले प्रत्यक्ष और फिर सादृश्य ज्ञान होता है। यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि यह नील गाय है, देखने के बाद उसे स्वतः स्मृति में पड़े गाय का ज्ञान हो जाता है। यह प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि सदृश्य वाली वस्तु गाय का यह प्रत्यक्ष नहीं होता। यह स्मृति में से भी भिन्न है, क्योंकि नील गाय का ज्ञान यहाँ नहीं आता, वह प्रत्यक्ष देखता है। यह शब्द प्रमाण भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ व्याप्ति वाक्य का अभाव है। यह अनुमान के अंतर्गत भी नहीं आता है, इसलिए यह स्वतंत्र प्रमाण है। यह न्यायिकों के मत से भिन्न है, क्योंकि न्यायिक जब नील गाय के आकार का एक जंगली जानवर देखने के पहले से यह सुनी हुई बात उनके मन में है कि नील गाय गाय के समान होती है, तब वह नील गाय को देखकर उसका गाय से मिलान करता है। मिलान में सादृश्य होने पर वह उसे पहचानता है। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों का संबंध है, पर ऐसा मीमांसकों को नहीं मान्य है, इसलिए वे इसे स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं। चार, शब्द। किसी विश्वस्त व्यक्ति द्वारा ज्ञान युक्त कथन प्रमाण है। इसके दो भेद हैं, एक पौरुषेय श्रेष्ठ व्यक्तियों का कथन, दो अपौरुषेय ईश्वर वाक्य जो वेद के वचन है, ये स्वतः प्रमाण है। इनमें कोई अंतर विरोध नहीं है और न ये किसी ज्ञान से बाधित हो सकते हैं। अपौरुषेय को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रभाकर के अनुसार ये हैं सिद्धार्थ वाक्य जो सत्य पदार्थ का ज्ञान कराते हैं, तथा विधायक वाक्य जो किसी कर्म के करने या न करने की आज्ञा देते हैं। कुमारिल ने वेद को केवल विधि वाक्य माना है। मीमांसा के शब्द को नित्य माना गया है, यही वाक्य और शब्दार्थ के विषय में है। शब्दों दो वर्णों के योग से बनता है, जैसे पानी पानी, पर किसी वर्ण का जितनी बार उच्चारण करे उतनी ध्वनियां होंगी, जितनी बार लिखे लिखावट उतने प्रकार की होगी, पर वर्ण वही रहेगा। अतः वर्ण नित्य है, इनका समूह शब्द भी नित्य है, इससे इसका अर्थ भी नित्य है, अतः शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य होता है। फिर अन्य ग्रंथों और वेद में अंतर है कि ग्रंथों में शब्दों का प्रयोग क्रम भाव की भिन्नता के साथ अन्य दोषों के होने की संभावना रहती है, और जो वेद में नहीं होती। इसी से वेद वाक्य अपौरुषेय और नित्य हैं। 5. अर्थापत्ति। अर्थापत्ति रवि दृष्टः श्रुतो वार्थो न्यथा नोपपद्यते इत्यर्थ कल्पना। दृष्ट या सुने हुए विषय की पुष्टि जिसके अभाव में न हो सके उस तथ्य की कल्पना अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति में दो शब्द हैं, अर्थ विषय प्लस आपत्ति कल्पना। प्राय किसी विषय के विरोधाभास से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए जिससे उसके हेतु की व्याख्या की गई हो कल्पना है। इसे विरोध के कारण समझने की कठिनाई दूर होती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि देवदत्त घर में नहीं है, इसके दो विरोधाभासी अर्थ निकलते हैं, वह घर के बाहर या वह मृतक है। पर कल्पना द्वारा जब यह अर्थ लेते हैं कि वह घर के बाहर है इसलिए वह घर में नहीं है, तो यही अर्थापत्ति है। इस प्रकार जब दो देखे या सुने गए तथ्यों की सत्यता में संदेह प्रभाकर के अनुसार अथवा विरोधाभास कुमारिल के अनुसार होता है तो इसका निराकरण कल्पना द्वारा किया जाना अर्थापत्ति है। इसमें तथ्य अकेला नहीं होता पर दो होते हैं और विसंगत होते हैं, इसलिए यह स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। इसमें व्याप्ति का अभाव होने से यह अनुमान से भिन्न है, आप्तवचन नहीं होने से शब्द प्रमाण से भिन्न है तथा सादृश्य ज्ञान का अभाव में उपमान से भी भिन्न है। अतः यह स्वतंत्र प्रमाण है। इसके द्वारा किसी विशेष घटना की व्याख्या होती है। जहाँ शाब्दिक अर्थ विरोधी होते हैं वहाँ लाक्षणिक अर्थ से इसका समाधान होता है। इसे छूटे हुए शब्दों की कड़ी को कल्पना से जोड़ लेते हैं, इसलिए यह अत्यंत उपादेय प्रमाण है। ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि देवदत्त जो घर में पहले विद्यमान देखा गया था उसका न होना इसी कल्पना के सहारे स्पष्ट किया जा सकता है कि वह कहीं बाहर अभी चला गया है। ऐसी समस्याएं हमारी दैनिक जीवन की हैं, इसी के सहारे सुलझाया जा सकता है। अतः यह अत्यंत उपयोगी है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग सर्वाधिक है। यह दो प्रकार का होता है, अ दृष्टार्थापत्ति तथा ब श्रुत्यार्थापत्ति। दृष्टार्थापत्ति में देखी हुई किसी वस्तु के विसंगति या अभाव की व्याख्या के लिए की गई कल्पना होती है। ऊपर देवदत्त के संबंध में की गई कल्पना इसी का उदाहरण है। दूसरे श्रुतार्थापत्ति में सुनी गई किसी बात को जिससे उसके अर्थ का पूर्ण स्पष्टीकरण न हो रहा हो कल्पना द्वारा उसको पूरा करना कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए कमरे में नृत्य शुरू हो रहा हो और कहा जाए बंद करो, क्या बंद किया जाए स्पष्ट नहीं है। कल्पना द्वारा यह अर्थ निकालना कि दरवाजा बंद करो इसका अभिप्राय हो सकता है। 6. अनुपलब्धि। हम किसी मकान में जाते हैं जहाँ सब कुछ है पर वहाँ घड़ा नहीं है, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि यहाँ सब है पर घड़ा नहीं है। यह घड़े के अभाव का ज्ञान ही घड़े की अनुपलब्धि का बोधक है। इसके अभाव का ज्ञान भी साक्षात होता है, जैसे अन्य उपस्थित वस्तुओं का साक्षात ज्ञान होता है। चूंकि अनुपलब्धि अन्य प्रमाणों की तरह है इसे भी स्वतंत्र प्रमाण माना गया है। इसे किसी दूसरे प्रमाण के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रत्यक्ष इंद्रियों से संबंध होता है, पर जो है ही नहीं वहाँ उसका प्रत्यक्षीकरण भला इंद्रियां कैसे कर सकती हैं। यह अनुमान से भी अलग है क्योंकि अनुमान के लिए उचित व्याप्ति की सत्ता होनी चाहिए, पर घड़े के आदर्शन और अभाव के बीच कोई व्याप्ति संबंध नहीं है। आत्मवचन के द्वारा न जानने योग्य होने के कारण यह शब्द प्रमाण से भिन्न है। सादृश्य ज्ञान के अभाव होने से यह उपमान प्रमाण से भी अलग है। इसी से अन्य प्रमाणों से अभिन्न उन्हीं की तरह इसे भी एक स्वतंत्र प्रमाण भट्ट मीमांसक कुमारिल भट्ट के अनुयायी तथा अद्वैत वेदांती मानते हैं, पर प्रभाकर इस मत से असहमत है। वही विचार सांख्य और न्याय दर्शन का भी है, वे इसे प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही मानते हैं। इनके अनुसार अभाव जिस स्थान पर होता है वह स्थानारूप में ही होता है, अतः वह स्थानारूप में ही होगा, इसका कोई अलग स्थान नहीं माना जा सकता। पर प्रत्यक्ष में विषय और इंद्रियों का संपर्क आवश्यक है, वह विषय घड़ा है ही नहीं तो उसका इंद्रियों में भला संपर्क कैसे होगा, इससे उसे प्रत्यक्ष के साथ जोड़ना अनुचित है। मीमांसा का तत्व ज्ञान। मीमांसा में संसार और उसके सभी विषयों के यथार्थता को स्वीकार किया गया है। इसे उनकी दृष्टि में बौद्धों, क्षणिकवाद, अद्वैतों के भाषावाद का कोई स्थान नहीं है। ये संसार और संसारी विषयों की सत्यता को मानते हैं। ये इनके अतिरिक्त अदृश्य को भी सत्य मानते हैं। इसी से आत्मा, स्वर्ग, नरक, देवताओं की स्थिति को भी स्वीकार करते हैं। ये परमाणुओं की सत्ता को भी मानते हैं, पर वैशेषिकों की तरह यह नहीं, वैशेषिकों की तरह यह नहीं स्वीकार करते कि ईश्वर परमाणुओं की संचालित करता है। इसके कथन उनके विचार में कर्म के आधार पर परमाणुओं का संचालन होता है, जिससे इस संसार को कर्म फल के भोग के लिए स्थान मानते हैं। पदार्थों की संख्या के विषय में प्रभाकर, कुमारिल और मुरारी के बीच मतभेद है। प्रभाकर ने जहां 8 पदार्थों की सत्ता माना है, वहां कुमारिल ने केवल 5 और मुरारी मिश्र ने ब्रह्म को ही एक परमार्थ भूत पदार्थ माना है, पर लौकिक व्यवहार में अन्य 4 पदार्थ स्वीकार किया है। प्रभाकर ने जिन 8 पदार्थों की सत्ता माना है, वे हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति, सादृश्य और संख्या। इनमें प्रथम 5 वैशेषिक के द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और समवाय से मिलते हैं। जो परतंत्रता यहाँ है, वही वैशेषिक का समवाय है। शक्ति नामक नया पदार्थ यहाँ कल्पित है, जिसे द्रव्य, गुण, कर्म, जिसने क्रियाशीलता का अभाव होता है, वे शक्ति के कारण ही क्रियाशील होते हैं। पर शक्ति अदृश्य होती है। समान गुणों के को देखकर ही सादृश्य का ज्ञान होता है। संख्या गुण के अंतर्गत है। कुमारिल ने 2 पदार्थों को 2 कोटियों में रखा है, एक भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। द्रव्य, गुण, कर्म और सामान्य को भाव पदार्थ माना है। अभाव पदार्थ 4 प्रकार के माने गए हैं, एक प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। मुरारी मिश्र ने पदार्थ के विषय में इससे भिन्न मत दिया है। उनके अनुसार मूल पदार्थ एकमात्र ब्रह्म ही है, पर लौकिक जीवन में उन्होंने 4 अन्य पदार्थों की कल्पना की है। एक धर्म विशेष निर्धारित आश्रय का होना, जैसे घड़े का आश्रय घड़ा है। 2 धर्म विशेष निर्धारित धर्म का होना, जैसे घट में घटत्व का होना। 3 आधार विशेष अनिश्चित समय द्वारा काल बोध का होना, जैसे इस समय का घट उस समय का घट। इसमें काल का आधार तो बनता है, पर इस समय उस समय के संकेत के कारण काल में अनिश्चितता रहती है। एवं 4 स्थान विशेष वह पदार्थ को दैशिक आधार प्रदान करता है, जैसे घर का घड़ा, भूतल का घड़ा। जगत विचार इंद्रियों द्वारा हम बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। संसार की बाह्य वस्तु है, जिस रूप में हम उसे देखते हैं वही उसकी सत्यता है। इस संसार को 3 तत्वों से बना माना जाता है। 1 शरीर, इसे भी भोगायतन कहते हैं। इस शरीर द्वारा ही जीवात्मा अपने पूर्वार्जित कर्म फल का भोग करती है। 2 इंद्रियां, इनमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां दोनों समाहित हैं। इन्हीं के द्वारा आत्मा कर्मफल के अनुसार सुख दुख को भोगता है। 3 भोग विषय की बाह्य वस्तुएं, वे पदार्थ जिनका भोग आत्मा करता है। नाना रूपी यह संसार इन्हीं 3 तत्वों से युक्त, अनादि और अनंत है। मीमांसकों की दृष्टि में कर्मफल भोग की क्रिया अनादि काल से अनवरत चलते रहने के कारण न संसार का अंत होता है, न उदय होता है। संसार के पदार्थ अणुओं से उत्पन्न है। इसमें कर्मफल भोगने के लिए अणुओं के संयोग से व्यक्ति उत्पन्न होता है। फल भोग लेने पर उसका अंत होता है, पर संसार सदा बना रहता है, क्योंकि फल भोग की क्रिया सदा चलती रहती है। यहाँ वैशेषिकों की तरह मीमांसक परमाणुवाद को स्वीकार करते दिखते हैं, पर अंतर यह है कि वैशेषिक जहाँ परमाणुओं का संचालक ईश्वर को मानता है, वहाँ मीमांसक इसे स्वीकार नहीं करते। वे मानते हैं कि कर्म के सामान्य नियम के अनुसार अणुओं से बनी सृष्टि इसलिए परिवर्तित होती रहती है कि जीव अपना कर्मफल यहाँ भोगता रहे। इस दृष्टि से मीमांसा दर्शन केवल वस्तुवादी ही नहीं है, बल्कि अनेक वस्तुवादी है। अतः यह वेद प्रतिपादित इंद्रियों के प्रत्यक्ष से भी बाहर के विषय स्वर्ग, नरक आदि को भी सत्य मानता है। शक्ति और अपूर्व मीमांसक कार्य कारण संबंध को स्वीकार करते हैं, पर उस पर नई दृष्टि से विचार करते होते हुए कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण के साथ शक्ति का भी होना बताते हैं, जिसके बिना कारण में क्रियाशीलता नहीं होती। यदि अंकुरण के कार्य को देखो तो इसके पीछे कारण बीज होता है, पर बीज तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसमें निहित शक्ति न हो। यदि बीज को भूनकर उसकी शक्ति नष्ट कर दी जाए या कीड़ा लगने से उसकी शक्ति समाप्त हो जाए तो बीज के रहते भी अंकुरण नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि जब तक शक्ति रहेगी तभी तक अंकुरण होगा या कार्य संपादित होता रहेगा। अतः कारण में शक्ति एवं विशिष्ट पदार्थ है जो उसके क्रियान्वयन में सहायक होती है। न्याय दर्शन भी इस मत से सहमत है। उनकी दृष्टि में कारण की क्रियाशीलता तभी तक बनी रहती है जब तक उसमें बाधक कारण नहीं होता। बाधक कारण के होने पर उसकी क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ये मानते हैं कि उपादान कारण ही क्रियात्मकता का केवल कारण नहीं होता बल्कि बाधक कारण का अभाव भी कारण होता है, जिसे न्यायिक प्रतिबंधका भाव की संज्ञा देते हैं। इस विवेचन में प्रतिबंध का भाव वही है जो मीमांसकों की दृष्टि में कारण की शक्ति है। इसी से मीमांसक दृष्टि से सहमत है कि कोई न कोई तत्व कारण के साथ क्रियाशीलता के लिए अवश्य रहता है। उसे ये अभाव न मानकर भाव पदार्थ के रूप में शक्ति की संज्ञा देना अधिक उचित मानते हैं। पर कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है। प्रत्येक क्रिया का फल अच्छा या बुरा मिलता है, पर उसकी प्राप्ति बाद में होती है। जैसे जो यज्ञ इस जीवन में किया जाता है जो उसका फल स्वर्ग की प्राप्ति अगले जन्म में मिलती है, वह शक्ति जिससे पूर्व कर्म का फल बाद में मिलता है उसे मीमांसक अपूर्व की संज्ञा देता है। अपूर्व का अर्थ है अति विशिष्ट रूप से। यहाँ अभिप्रेत है अति विशिष्ट शक्ति जिससे पूर्व कर्मों का फल बाद में मिलता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है जो पहले नहीं था। जिस कर्म का फल दूसरे लोक या जन्म में हम भोगते हैं वह पहले इस जन्म या लोक में नहीं था, पर अदृश्य शक्ति का विशिष्ट शक्ति के कारण वह पहले के कृत कर्मों का फल भोगता है। इस प्रकार अपूर्व कर्म के सिद्धांत का दूसरा नाम माना जा सकता है। यह कर्ता और फल के बीच की कड़ी है। यह पहले कर्ता में रहता है पर समय पाकर कर्म का फल उत्पन्न करता है। कुमारिल ने माना है कि यह आत्मा के भीतर उदय होने वाली अदृश्य शक्ति होती है। यह कर्म के पूर्व कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा एक सार्वभौम सिद्धांत है। यह स्वयं परिणामी है। इसके लिए किसी दूसरी सत्ता की आवश्यकता नहीं होती जिसे हम ईश्वर माने। यह एक सहज स्वयं चालित क्रिया है जो एक के बाद एक होता है। जैसे कर्म फल इस जैसे कर्म फल इस प्रकार मीमांसक इस शक्ति को अनवरत मानते हैं। यह कर्म और फल दोनों के बीच विराजमान होता है, तभी पूर्व के कर्म का फल कालांतर में मिलता है। इसी से कर्म कांड में इसका विशेष महत्व है। इसका ज्ञान वेद से प्राप्त होता है और अर्थापत्ति से भी, पर शंकराचार्य ने इसकी आलोचना की है। उनके अनुसार अपूर्व चूंकि अचेतन है इसलिए क्रियाशील बनाने के लिए आध्यात्मिक सत्ता आवश्यक है, अतः अपूर्व की व्याख्या को समीचीन नहीं मानते। आत्मा और आत्मज्ञान मीमांसाकार मानते हैं कि आत्मा बाह्य पदार्थों और मनोभावों का भोगता है, ये इसके योग्य विषय है। शरीर भोग का स्थान अर्थात भोगायतन है और इंद्रियां वे साधन है जिनके द्वारा भोग किया जाता है। प्रत्येक शरीर में आत्मा है इसलिए आत्मा अनेक है। यह नित्य व्यापक और सर्वगत है इसलिए मरने बाद भी आत्मा स्वर्ग में सुख दुख भोगने के लिए रहती है। शरीर के मरण धर्मा होने पर भी अमर है, अतः इसकी न उत्पत्ति होती है न विनाश होता है। यह बुद्धि और इंद्रियों से भिन्न है क्योंकि यह अनित्य है। यह शरीर से भी भिन्न है क्योंकि शरीर ज्ञान से रहित और मरण धर्मा है जो आत्मा का गुण नहीं है। ज्ञान या चेतना आत्मा का गुण नहीं है, पर यह आत्मा से अलग भी नहीं होते। सुषुप्तावस्था एवं मोक्षावस्था में आत्मा चेतना और ज्ञान से शून्य होती है, पर ज्ञान का आशय आत्मा ही है। इसका स्वरस जड़ है, चैतन्य इसका गुण नहीं है पर यह आगंतुक गुण है। इस प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाशमान होने से विषयों का कर्ता भोक्ता और ज्ञाता माना जाता है, पर कुमारिल ने आत्मा को चैतन्य विशिष्ट माना है। विशेष स्थिति में शरीर तथा विषय के संयोग होने पर आत्मा में चैतन्यता आती है, अन्यथा वह जड़ रहता है। उन्होंने आत्मा में दो अंशों का होना स्वीकार किया, चित्त और चित्त। चितांश में वह ज्ञान का अनुभव करता है और अचितांश में वह परिणाम का भोग करता है। इस प्रकार आत्मा जड़ और चेतना दोनों से युक्त होता। अब प्रश्न है कि आत्मा का ज्ञान किस प्रकार होता है। इस विषय में प्रभाकर और कुमारिल के अलग अलग मत हैं। प्रभाकर तथा उनके अनुयायी मानते हैं कि ज्ञान के प्रकाश के लिए किसी दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वप्रकाश है, पर यह नित्य नहीं है। प्रत्येक विषय के साथ आत्मज्ञान जुड़ा होता है, इससे यह आत्मा का आगंतुक गुण होने से उत्पत्ति और विकासशील है। जब विषय का ज्ञान उस विषय ज्ञ को प्रकाशित करता है, तब उस समय वह स्वयं प्रकाशित होकर आत्मा को भी प्रकाशित करता है। इस प्रकार ज्ञान के समय विषय का ज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञाता तीनों प्रत्यक्ष रहते हैं। यही त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद है। इसमें विषय का ज्ञान इंद्रियों के समक्ष उपस्थित विषय को ज्ञ रूप में, अपने को ज्ञान के रूप में और ज्ञान के आशय आत्मा को ज्ञाता के रूप में प्रकाशित करता है। यहाँ यह समझना चाहिए कि भले ही सभी ज्ञान स्वप्रकाश हैं, पर आत्मा जो जाता है जड़ होने कारण स्वप्रकाश न होकर अपने प्रकाश के लिए ज्ञान का आश्रित होता है। इस प्रकार ज्ञेय या विषय और आत्मा या ज्ञाता प्रकाशनार्थ ज्ञान पर ही निर्भर रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक विषय के ज्ञान के साथ आत्मा ज्ञाता के रूप में, पदार्थ ज्ञेय विषय के रूप में और ज्ञान स्वप्रकाश ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है। इसी से जब कोई भी ज्ञान होता है तो हम कहते हैं कि हमने अमुक वस्तु देखी या देख रहा हूँ, या हम ज्ञाता के रूप में होते हैं तभी हम स्पष्ट करते हैं हमने देखा। पर कुमारिल और उसके अनुयायी इस विचार से सहमत नहीं है। ये मानते हैं कि ज्ञेय विषय का ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान के द्वारा ज्ञेय विषय की प्रकाश ही प्रकाशित होती है, न ज्ञाता प्रकाशित होता है और न ज्ञान प्रकाशित होता है। इस प्रकार ज्ञान का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, केवल उसका अनुमान होता है। यहाँ ज्ञाता भी ज्ञेय बनकर ही ज्ञान से प्रकाशित होता है। आत्मा भी अपना ज्ञेय उसी प्रकार बनता है जैसे अन्य वस्तु इसलिए ज्ञेय होते हैं। जब केवल ज्ञान का अनुमान मात्र होता है तो वह अनुमान उस विषय के ज्ञान के समय उत्पन्न ज्ञातता के आधार पर होता है, जो ज्ञान के समय ज्ञात को प्रतीति होती है। यह ज्ञातता आत्मा को आकर विषय के ज्ञान के समय विद्यमान हो जाती है। यह आत्मा का स्थायी धर्म न होकर ज्ञान के क्रिया के समय आता है। यही भट्ट मत के कुमारिल के ज्ञातता का सिद्धांत है। प्रभाकर का इस आधार पर खंडन करते हुए कुमारिल का विचार है कि लोक व्यवहार में तथा शास्त्रीय व्यवस्था में आत्मा ज्ञान, जहाँ ज्ञान का कर्ता है वही ज्ञान का विषय भी है। तभी वेद कहता है आत्मानम विद्धि, अर्थात अपने को जानो, तथा व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं मैं अपने को जानता हूँ। मीमांसा का आचार्य तत्व धर्म। मीमांसा के आचार्य जैमिनी ने मीमांसा सूत्र के प्रथम सूत्र में ही धर्म का की जिज्ञासा की है, अतः तो धर्म जिज्ञासा। इसके आगे द्वितीय सूत्र में धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है चोदना लक्षणोर्थो धर्म, अर्थात चोदना या वेद के विधि वाक्य द्वारा बताई गई क्रिया ही धर्म है। इस प्रकार वैदिक क्रियाएं कर्म कांड ही धर्म की मूल है और यही धर्म वेद का मुख्य तात्पर्य है। अतः वेद का ज्ञान प्रतिपादक वाक्य जो क्रियाओं की व्यवस्था का निषेध करता है वही अर्थवाद है। इसी से किसी प्रयोजन हेतु वेद विहित यज्ञादि अर्थ का क्रियाएं ही धर्म है। इस प्रकार ईश्वर के स्थान वैदिक विधि वाक्य को ही मीमांसक धर्म मानते हैं। इसी के द्वारा दुखों से निवृत्त होकर जीव निःश्रेयस स्वर्ग की प्राप्ति करता है। अतः कहा गया है कि स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। इस कर्म के द्वारा अवसर आने पर फल की प्राप्ति होती है। कर्म मुख्यतः तीन बताए गए हैं, एक कर्तव्य कर्म जिनका करना जीव का कर्तव्य है। इसके दो भेद हैं, एक नित्य कर्म जो नित्य किए जाते हैं जैसे ध्यान पूजा आदि, व नैमित्तिक कर्म जो किसी विशेष अवसर के निमित्त किया जाता है जैसे एकादशी व्रत श्राद्ध आदि। प्रभाकर इन्हें निष्काम भाव से करने की सलाह देते हैं। जबकि इनमें पाप या पुण्य फल नहीं मिलता, केवल ये कर्तव्य मात्र हैं। पर कुमारिल की दृष्टि में इनके न करने से पाप मिलता है और करने से पूर्व पाप का नाश होता है। दो, काम्य कर्म, जिसको किसी कामना की सिद्धि के लिए किया जाता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ करने से राज्य विस्तृत होगा पर न करने से कोई हानि नहीं होगी। तीन, प्रातिषिद्ध कर्म, जिनको करना विवर्जित किया गया है क्योंकि अशुभ कारक होने से इनको करने से पापार्जन होता है। एक और कर्म बताया गया है। चार, प्रायश्चित कर्म, जो पाप कर्म करने से बुराई आती है उनको रोकने के लिए प्रायश्चित कर्म किया जाता है। पर जब कर्म पहले ही समाप्त हो चुके होते हैं तब भविष्य में कर्म के न करने पर भी वे फलदायक होते हैं। यह कैसे? इसका उत्तर है अपूर्व का बने रहना, जिसकी चर्चा शक्ति के साथ की जा चुकी है। यह कर्म के बाद फलोत्पादन के बीच बना रहता है, उसी के द्वारा कृत कर्म को फलोत्पादकता बाद में होती है। इस प्रकार यह शंकराचार्य के अनुसार कर्म की उत्तरावस्था और फल की पूर्वावस्था होती है। यह मीमांसकों की कल्पना उनकी मौलिक देन है। कर्म, कर्म फल के विषय में मीमांसकों की दो दृष्टियां हैं। यह सर्वविदित है कि मनुष्य दुखों से छुटकारा पाने तथा इच्छा पूर्ति के द्वारा सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है। यही मत कुमारिल का है। इसे वह इष्ट साधनता ज्ञान की संज्ञा देते हैं, अर्थात अभिष्ट की सिद्धि हेतु कर्म किए जाते हैं। इसमें हित साधन इच्छा पूर्ति की प्रधानता होती है। पर प्रभाकर की दृष्टि में वेद में निर्दिष्ट कर्तव्य का ज्ञान कर्तव्य मानकर करना चाहिए, उसके पीछे कोई हेतु नहीं रखना चाहिए। यहाँ कर्म करने के लिए मानते हैं, लाभ के लिए नहीं। इसी से इनका सिद्धांत अर्थता ज्ञान अर्थात वेद अनुसार कार्य के लिए किया जाता है। अतः काम्य कर्म, इच्छा के लिए होने वाला कर्म को भी प्रभाकर ने कुमारिल के कामना हेतु कृतकर्म के विपरीत माना है कि यह कर्म के अधिकारी की परीक्षा के लिए है। नित्य और नैमित्तिक कर्म को भी प्रभाकर वेद का आदेश अनुलंघनीय मानने के कारण करने की स्वीकृति देते हैं। इस प्रकार प्रभाकर निष्काम कर्म की भावना से कार्य का संपादन करना मानते हैं। इस दृष्टि से यह गीता के निष्काम कर्म योग से प्रभावित लगते हैं। इस प्रकार मीमांसा कामना विहीन होकर कर्म करने की सलाह देता है, भले ही कर्म फल के प्रदान की क्षमता रखते हैं। देवता, वैदिक क्रियाओं यज्ञों के दो भाग हैं। क्रिया भाग जैसे दही चढ़ना, घी चढ़ना आदि, और दूसरा मंत्र भाग जिसे विशिष्ट देवता का आवाहन करते हैं। इसे द्रव्य तथा देवता भी कह सकते हैं। देवता तीन रूपों में माने जाते हैं, अर्थ देवता, शब्द विशिष्ट अर्थ देवता और शब्द देवता। इनमें अर्थ शब्द का अनुगामी होता है। शब्द विशिष्ट अर्थ में शब्द ही प्रमुख है, अतः शब्द देवता ही वैदिक देवता का मूल रूप है। इसको मंत्रों द्वारा प्रकट मानकर उन देवता को मंत्रों से आहुति देते हैं, जैसे अग्नय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा आदि। पर शब्दमय देवता का विग्रह या स्वरूप भी मीमांसा द्वारा ग्रहण किया जाता है कि इन देवों का स्वरूप है जिससे ये दिए गए भविष्य का भोग करते हैं। उनका जीवन सुख सुविधाओं ऐश्वर्य से युक्त होता है। वे प्रसन्न होते हैं जिसे कर्म करने वाले को उसके कर्म का फल प्रदान करते हैं। ये उनकी पांच विशेषताएं हैं, विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्यम च प्रसन्नता फलदातृत्वमित्येतत् पंचकम विग्रहादिकम। पर देवता के विग्रह का खंडन अधिकांश मीमांसकों को सबर स्वामी, खंडदेव, पार्थ सारथी, कुमारिल भट्ट आदि ने किया है। ये कर्म का अंग ही देवता को मानकर कर्म को ही फलदाता मानते हैं। ईश्वर, आचार्य वादरायण के अनुसार कोई चेतन पुरुष अवश्य है जो कृत कर्मों का फलदाता है, वही चेतन ईश्वर है। पर जैमिनी ने ईश्वर की सत्ता के स्थान बताया कि यज्ञ कर्म स्वतः कर्मानुसार करने वाले को फल देता है। इस प्रकार फलदाता के रूप में ईश्वर की सत्ता को नकारना प्राचीन मीमांसकों का विषय था। इसी से पीछे ईश्वर की सत्ता को यज्ञपति के रूप में स्वीकार कर मीमांसाकारों ने कहा, ईश्वरापर्ण बुद्धया क्रियमाणस्तु निःश्रेयस हेतु। अर्थात किए हुए कर्म को ईश्वर को निःश्रेयस के हेतु समर्पित कर देना चाहिए। इसी को प्रतिपादित करने के लिए शेषवर मीमांसा ग्रंथ की रचना की गई। प्रभाकर इसी मत के पक्षधर हैं तथा अनुमान द्वारा नहीं बल्कि श्रुति वाक्यों द्वारा उन्होंने ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित किया। इसे ही कर्म फल प्रदाता माना गया। स्वर्ग एवं मोक्ष। स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात स्वर्ग की इच्छा रखने वालों को यज्ञ करना चाहिए। यही स्वर्ग की प्राप्ति की प्राचीन काल में पूर्व मीमांसकों का परम लक्ष्य था। यही जीवन का अत्यंतिक उद्देश्य था। पर धीरे धीरे जग मीमांसा दर्शन विकसित हुआ तो स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य माना गया, जैसा अन्य दार्शनिक मानते हैं। मोक्ष की व्याख्या इस प्रकार की गई है, प्रपंच संबंध विलयो मोक्ष, अर्थात सांसारिक संबंधों का आत्मा के साथ समाप्त होना ही मोक्ष है। सांसारिक बंधन में आत्मा तीन प्रकार से बंधती है, शरीर, इंद्रिय और भोग विषय पदार्थ। शरीर के द्वारा हम संसार में रहते हैं, इंद्रियों के द्वारा संसार की वस्तुओं का साक्षात्कार कर संबंध जोड़ते हैं तथा सांसारिक भोग विषयों में लिप्त रहते हैं। भोग विषय के द्वारा आत्मा संसारिकता में बन जाती है। जब इन तीनों का आत्यंतिक पूर्वोत्पन्न का नाश हो जाता है तो जीव बंधन मुक्त होने से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में आत्मा चेतना विहीन हो जाती है और तब आत्मा को धर्म अधर्म का ज्ञान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी का परिणाम है पुनर्जन्म का न होना। मोक्ष की स्थिति में आत्मा के अचेतनता के कारण अनुभूति का अभाव रहता है। उसमें सुख दुख, सुख इच्छा तृष्णा आदि कोई अनुभूति नहीं होती, जो देहेंद्रिय के संयोग में होते हैं। मोक्षावस्था में आत्मा सुषुप्त स्थिति की तरह ज्ञान और आनंद से विहीन रहती है। भले ही उसमें ज्ञान शक्ति बना रहता है, ऐसा कुमारिल का मत है, पर नारायण भट्ट के अनुसार कुमारिल की दृष्टि में मोक्ष की स्थिति में केवल विषय सुख का अभाव रहता है। किंतु प्रभाकर मानते हैं कि योग सिद्धि मोक्ष, अर्थात बिना कामना के नित्य कर्मों का अनुष्ठान ही मोक्ष है। इसमें फल की कामना या आसक्ति का अभाव रहता है, केवल क्रिया होती रहती है। इस प्रकार मोक्ष की अवस्था में आत्मा जड़वत रहती है, क्योंकि वह शरीर, इंद्रिय और विषय से अलग हो जाती है। इसमें न केवल दुखों का नाश होता है अपितु आनंद का भी आभास नहीं होता, तब वह अपने विशुद्ध रूप में होती है। यही आत्मा की मुक्त स्थिति है। इस स्थिति की प्राप्ति तभी संभव है जब काम्य और निषिद्ध कर्मों के से जीव अलग रहे पर नित्य कर्मों का पालन करता रहे। इस प्रकार मोक्ष के लिए मीमांसा ज्ञान कर्म समुच्चय को मानता है।